किसी के पास कोई वस्तु हो तो चुराने की लोग हो ही जाती। तो आज बहुत सुंदर अर्थात श्याम सुंदर जो है राजा रानी के भाव और अंग कांति दोनों को अपहरण कर लिए, चोरी कर लिए। एक रूप से तो उनके सामने श्याम सुंदर होके विराज रहे और एक रूप से आच्छादित हो गए, अलग हो गए। एक समय राजा रानी बोली, हे श्याम सुंदर, मैं जिस प्रकार आपके सौंदर्य का अनुभव कर सकती हूँ, जिस प्रकार मैं आपकी सेवा और उस सेवा के सुख का अनुभव कर सकती हूँ, शायद वैसा आप मेरे सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि आपके जो चित्त की वृत्ति है वो मुझ जैसा स्थिर नहीं है। मैं आपका पूरा अनुभव इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपसे सिवा कुछ नहीं जानती। मेरा जो तन मन प्राण जो कुछ है आपके प्रति समर्पित है। मैं आपसे सिवा और कुछ भी नहीं जानती, इसलिए हम आपको ठीक ठीक से अनुभव कर सकते। लेकिन आप ऐसे नहीं है। आपका मन, आपकी चित्त एक जगह पर नहीं रह सकता। आप बोल तो देते हैं कि हम हे राधे आपके ही दास हैं, आपके ही कुंज की ओर आ रहे हैं, लेकिन कभी आप चंद्रावली के यहाँ तो कभी भद्रा के यहाँ, कभी सैदी और पद्मा के यहाँ चले जाते। तो जो व्यक्ति एक दिन में 50 जगह पर घूम सकता है, चक्कर लगा सकता है, वो समझ लो उसकी चित्त की वृत्ति कैसी है, कितना चंचल है वो। और जो चंचल है, जिसकी चित्त की स्थिरता नहीं है, वो क्या प्रेम का अनुभव कर सकता है। इसलिए जितना मैं अनुभव कर सकती हूँ उतना आप नहीं कर सकते। उस टाइम श्याम सुंदर हंस पड़े और बोले, हे राधे, आपको आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, मेरा केवल इतना ही रूप नहीं है। मैं इस रूप से तो आपके साथ हूं, और इस सत्य के इस रूप से मैं आपका उतना अनुभव नहीं कर पाता जितना आपका प्रेम है। और जब मैं आपके प्रेम के छा तक नहीं पहुंच पाता, अंत तक नहीं जाता, तो मैं व्याकुल होता हूं। मन में ऐसा भाव आता है कि राधा रानी का प्रणय क्या है, वो क्या प्रेम है कि मुझको कोई जगत में ऐसा नहीं कि मेरे को कोई रोक दे या मेरे को कोई किसी तरह से विचलित कर दे। क्योंकि जितना भी जगत के नायक है, सौंदर्य है, वो सब में सब मुझ में, समस्त नायकों का भी मैं नायक हूं और समस्त सौंदर्यों का मैं सौंदर्य हूं। लेकिन पता नहीं आपके आगे जब मैं आता हूं तो मेरा ये रूप, मेरा ये गुण, ये मेरी लीला, ये मेरी सौंदर्य, समझदारी, ये विवेक, पता नहीं क्या हो जाता। मेरा कोई भी रूप गुण लीला आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन आप हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते। मैं जगत मोहन हूं, लेकिन आप मेरे को मोहित कर देते। मेरे सौंदर्य को देख कर कोई भी अप्सरा, कोई भी स्त्री स्वर्ग में हो, चाहे कहीं का भी, लक्ष्मी ही क्यों ना हो, रुक्मिणी, सद्भामा, अरुंधति, कोई भी मूर्छित हो जाती है। मेरे सौंदर्य के आगे वो खड़ा होकर के रह नहीं सकती, देखते के साथ ही उनके हृदय में एक बेहोशी का एक करण सा नक्सर वो गिर पड़ती। लेकिन आप ये कैसा है जो मेरे सौंदर्य के आगे खड़े होकर के, आपको तो कुछ विकार नहीं होता लेकिन मेरे को ही दिवस होना पड़ता। और मैं सोच नहीं पाता ऐसा क्यों। आपके प्रेम में ऐसा क्या चीज है जो मुझे हाथ से बंसरी छूटना और माथे का मुकुट गिर जाना, पीताम्बरों का खुल जाना, हमारा जो पित बसन वो भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है मेरे शरीर से, सब क्यों होता है। और इसी चीज को मैं सोच करके आपको बताए बिना ही मैंने आपके भावों का चोरी किया। और भावों के साथ साथ आपके सौंदर्य को, आपकी कांति को भी मैंने अपहरण कर लिया। क्या कभी आपने उसका अनुभव किया है? राधा जी बोली, हाँ एक बार मैं सपने में तो देखी हूं, सपने में मैंने एक बार अनुभव किया कि जो आप श्याम वर्ण है वही श्याम गौर वर्ण हो गए। आप यहां पर गोपों के कुल में जन्म लिए और उस गौर वर्ण में आप एक गिप्त के वेश में है, और आपके अंदर में जो उन्माद में देखता बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता है। अब मेरे भाव मेरे जैसे पीढ़ा में तड़प रहे हैं, अब मेरे जैसे उन्मादनी होकर के कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, केशव हे माधव तुम कहाँ हो, हे देव हे दैत हे भुवनई का बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणई का सिंधो, हा नाथ हे रमन नयनाभि राम, हा हा कदानुभविता सी पदम विस्फोर में। मैं एक ऐसा आपका रूप को दर्शन कर रही हूं जिस रूप में आप बिकल होकर के दौड़ रहे हैं। आपका श्री विग्रह एक सोने के सफाए हुए सुमेरु पर्वत के समान दिखता है, और जो उस विग्रह के द्वारा जब पृथ्वी पर चलते तो पृथ्वी कांपती है, और जब पछाड़ खाकर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कहीं आपका शरीर खंड विखंड न हो जाए, चूर चूर न हो जाए। उस विग्रह में मैं यही अनुभव करती हूं कि बिल्कुल आप मुझ मेरे जैसे ही उन्मादनी होकर के उन्माद ग्रस्त की तरह कभी शरीर को पृथ्वी में ऐसे रगड़ते हैं जैसे मानो चंदन की तरह शरीर को पृथ्वी में घिस डालें, जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथों को उठा करके जमीन से गिर पड़ते हैं। और कई बार आप ऐसे भी बोल रहे हैं, आई दीन दयाद नाथ हे मथुरा नाथ कदा लोक्य से हृदय स्वदलोक कात्रम दईत भ्राम्यति किम करोम हम। आप उस रूप में कभी कभी कह रहे, हे दीनदयाल, हे मथुरानाथ, हे ब्रजनाथासीनाशन, हे गोविंद, मैं कब आपको पुनः देख पाऊंगी। मैं आपको देखे बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ये दिन और रात बिना आपके दर्शन को ही बीत रहा है। कब वो दिन आएगा कि मैं पुनः आपको दर्शन कर पाऊं। इस प्रकार आप मेरे भाव में मेरे जैसे ही अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा मैंने सपने में देखा लेकिन वो कौन है आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ, केवल सपने में ही अनुभव किया। उसने श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले कि हे राधिके, जब मैंने आपके भावों को स्पष्ट करने में अपने को असमर्थ समझा और आप जैसे हमारे हृदय में जब ऐसा छटपटाहट नहीं दिखी, तो मेरे हृदय में आपके जो हृदय का जो भाव था उसका स्वादन करने के एक लोभ हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि राधा जी के हृदय में क्या ऐसी वस्तु है जो मुझसे विलग होकर के वो ऐसे व्याकुल हो जाती है और मैं उनसे विलग होकर इतना नहीं छटपटाता हूं, लेकिन इतना मुझ में नहीं होता जितना कि उनके मदनार्थ भाव में होता है। तो मेरे अंदर में भी एक लोभ हुआ, मैंने प्रत्यक्ष में देखा आप उस मदनाक भाव की प्रेम बजित्री, एक दिन की हमें लीला याद आती है कि हम दोनों प्रेम सरोवर के ऊपर बैठे हुए थे और उस समय एक कोई काला भौरा उड़ता हुआ आया। वो भौरा हूं कर रहा था, अब भौरे को देख करके डर जाती हैं, इसलिए मधुमंगल ने सोचा इस भौरे को यहां से भगा दिया जाए, नहीं तो राधा रानी को भय होगा और श्याम सुंदर को अपनी लीला में बाधा होगी, अतः मैं ही क्यों नहीं इसे यहां से हटा दूं। तो मधुमंगल जो था एक डंडा लेकर के और उस भौरे को खदेड़ने लगा है, भाग यहां से चला जा मधुसूदन, तू कहां से आ गया, क्योंकि भौरा के एक नाम है मधुसूदन, संस्कृत में मधुसूदन उसको कहा गया, कृष्ण का भी एक नाम है मधुसूदन, जिन्होंने मधु जयंत को हनन किया सूदन किया नाश किया इसलिए मधुसूदन, अथवा जो मधु का पान करता है मकरंद को पीता है उसको मधुसूदन, तो कृष्ण एक तरफ मधुसूदन, भौरा को इसलिए मधुसूदन कहा गया क्योंकि फूलों को काट करके और उसके रस को निकाल करके पी लेता है। सुदयति खंडयति इति सूदन, भौरा जब देखता है कि फूल में रस है तो फिर उस फूल के प्रति कोई दया नहीं करता, उसको जैसे तैसे काट पीट करके रस को निकाल लेता है, इसलिए उसका एक नाम है मधुसूदन। तो मधुमंगल ने उस भौरा को वहां से उड़ा दिया और जहां पर राधा कृष्ण बैठे तो वहां पर बड़े प्रसन्नचित होकर मधुसूदन आया, हाथ को हिलाता हुआ अब कहने लगा, हे श्याम सुंदर, हे राज की आप लोग चिंता मत करिए, हमने मधुसूदन को भगा दिया। राधा रानी श्याम सुंदर की गोद में पड़े हुए थे, सोई हुई थी अर्ध निंद्रा में, रूपमणि रतिमणि उनके चरणों को दबा रहे हैं, है ना, एक रघुनाथ गोस्वामी जी का एक भाव है, श्री रूप मंदिरी कराद सीत पाद पल्लव गोश्चंद्र नंदन भुजार हित मस्तकाया हा मोदतः कनक गौरी पदार बिंदम संवाहनानी सनक तव किं करिष्ये। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी अपने भाव में अपने रति मंदिरी दासी के भाव में राजा रानी जी से प्रार्थना कर रहे कि मेरा वो दिन कब आएगा जब आपके चरण कमल रूप मंजरी के हाथ में होंगे और आपके सिर जो होगा श्याम सुंदर के गोद में होगा, गोष्ठ नंदन भुजार पिता मस्तक आए, और उस समय दासी भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और अपने रूप मंजरी के आदेश से एक चरणों को एक ही सहलाएगी संवाहन करेंगी, वो दिन मेरे वो कब आएगा। तो उस प्रेम सरोवर पर ये लोग उनके चरण को चाप रहे हैं दास के और श्याम सुंदर के हृदय में अपने सिर को रख करके वो सोए हुए हैं एक प्रेम की स्थिति में। और जरिए सोने की मधुसूदन चले गए तो प्रेमी जो होते हर वस्तु में अपने प्रियतम का ही भाव का अनुभव करते हर शब्द में वो अपने प्रियतम का ही अर्थ निकालते चाहे शब्द किसी भी सही को क्यों न कहा गया हो लेकिन वो प्रेमी जन सोचते हमारे प्रियतम के ही भाव के लिए शब्द कहा गया उनके बारे में कुछ कह रहा तो राधा रानी तो एकदम से मूर्छित होकर के कृष्ण के गोद में ही गिर पड़े मूर्छित हो। और दूसरे क्षण जब होश आया तो विलाप करने लगी हे केशव हे माधव तुम कहाँ चले गए हे नाथ रमन प्रेस्तक वासी क्वासी महाभुजन मुझ दासी को यहाँ एकांत में छोड़ करके आप कहाँ चले गए। श्याम सुंदर के ही गोद में उनका सिर है लेकिन कह रहे आप कहाँ हैं। श्याम सुंदर बोले क्या प्रेम होता है हमने ऐसा तो नहीं देखा कि अपने प्रियतम के पास रह करके भी ब्याह कूटता हो वो पास में और ऐसे लगे चले गए। उनको लगा कि जब मैं पास में रह के इतना दिक्कत हो रहा है मैं सचमुच में चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो श्याम सुंदर समझ नहीं पाए कि प्रेम की कौन सी गति है ये कौन सा अवस्था है जिस अवस्था में प्रियतम के सन्निकट रहने पर भी प्रेम व्यतीत होता है और ऐसा लगता है कि हमारे प्रियतम है ही नहीं अथवा जहां पर मिलन में विरह होता है और विरह में जहां मिलन होता है। श्याम सुंदर पास में राधा जी को लगता श्याम सुंदर नहीं है और श्याम सुंदर चले गए लेकिन उनके पास में दिखाई देते जब श्याम सुंदर नहीं है तो कहते जिद देखो थी तो श्याम मई है। मथुरा गमन के बाद जब उद्धव आदि आए कुछ संतवना देने के लिए तो राधा जी कह रहे अरे उद्धव तुम तो बड़े बाबरे हो पागल हो और हमें तुम सिखाने आए हो और वो भी और कोई नहीं तो योग। उद्धव जी कह रहे कि तुम योग करो क्योंकि योग एक ऐसी वस्तु है जो वियोग को संयोग में बदल देता है। अब ध्यान में अपने प्रियतम को देखो जैसे ध्यान करेंगे आपके प्रियतम आपके हृदय में उतर जाएंगे क्योंकि ध्यान एक बड़ी वस्तु होती है। राधा जी बोलते ध्यान हम कैसे करें हम योगी नहीं है हम अबला हैं और हमारे में इतना ज्ञान नहीं कि हम ध्यान करें क्योंकि ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आ उस सते नलिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वर हृदय की चिंता मगाध बोले हे श्याम सुंदर आपके चरणों को तो बड़े बड़े जोगी लोग चिंतन करते हैं क्योंकि वो बड़े अगाध ज्ञान के समुद्र होते हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार से सुमना नाड़ी के ऊपर उठाते हुए अपने चक्र को भेदन करना है। वो जानते जम नियम प्रणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की परिभाषा लेकिन हम तो ऐसी नहीं हम तो घर के कुएं में पड़ी हुई हैं हम तो घर के अंधेरे कुएं में गिरम अंध कूपम अर्थात गोपिकाएं उद्धव की इस बात को सुन करके हृदय में जलन तो हो रही लेकिन दैनता में कह रहे कि हम लोग जोगी नहीं हम तो घर में रहने वाले एक साधारण अबला है हम में कोई समझदारी नहीं कोई विवेक नहीं हम गुरुकुल में पढ़ी लिखी नहीं हम कहीं जाकर के कोई बीए एमए नहीं की हम तो बिल्कुल अनपढ़ गवारी नहीं हम कुछ नहीं जानते हम खाली इतना ही जानते सुबह में उठ करके झाड़ू लगाना पोछा देना बर्तन साफ करना और दही बिलोना मक्खन निकालना और साथ में गोविंद दामोदर माधव तुम हमें ध्यान की बात सिखाते। ठीक है, थोड़ा समय मैं आपकी बात मान भी लूं, मैं ध्यान करूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, उद्धव की ध्यान करने पर वस्तु ध्यान के माध्यम से तो हमारे हृदय को शांत नहीं कर सकता। मान लो कमल का स्वभाव शीतल है, कमल ठंडा होता है, और हम ध्यान करें तो ध्यान करने से कमल की आकृति हृदय में तो आ जाएगी, लेकिन कमल का जो ठंडक और सुगंध है वो अनुभव में नहीं आएगा। कमल ठंडा होता है तब पता चलेगा जब हम कमल को छुए, स्पर्श करें, धारण करें। और कमल में सुगंध होता है तब पता चलेगा जब उसको हम नाक से सूंघे। ध्यान से क्या पता चलेगा तो इस कमल कहीं जमुना जी में और ध्यान हम यहां बैठे कर रहे हैं। तब उद्धव अगर हम ध्यान करें तो हम और बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने श्याम सुंदर के चरण कमलों का सौंदर्य का अनुभव किया, साक्षात रूप में दर्शन और सेवा किए, और आज वो हमसे अलग है। हम जैसे ध्यान करेंगे वो सारी बातें याद आ जाएंगी, और फिर ऐसा लगेगा कब वो स्पर्श हो, कब उनकी सेवा करो, ध्यान से तो संभव नहीं है। एक दम उनके विरह में जल रही और तुम फिर जलाना चाहते हो, हम इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ध्यान ध्यान की बातें दूर रखो, क्योंकि हम ध्यान से प्रसन्न होने वाले नहीं है, हम प्रेमी हैं, और प्रेमी जो होते हैं प्रियतम को पास में देख करके खुश होते हैं, वो ध्यान ज्ञान की बात नहीं जानते कि किसी का प्रियतम कहीं और उसको हम एक पाठ पढ़ाए तो ध्यान करो अपने प्रियतम को। बोले ध्यान से क्या आना जाना, जब तक प्रियतम पास में नहीं तो ध्यान से क्या करें। ध्यान करने से तो और हम परेशान हो जाते हैं, और हमको दुख और दर्द और बीड़ा बढ़ता है। तो कृष्ण मानो सोच रहे हैं कि राधा जी के अंदर में ऐसा कौन सा प्रणय है, कौन सा ऐसा प्रेम है कि जहां पर मुझसे विलग होकर के विरह में तपना तो दूर की बात, हमारे पास में रहकर के भी जो उन्मादनी हो जाती, और जहां पर ध्यान आदि को कुछ नहीं समझती। मैंने उसको उपदेश भी दिया पत्रिका के माध्यम से उद्धव जी को, लेकिन उस उपदेश को भी उन्होंने दूर रख दिया। तो क्या चीज है, इसीलिए उन्होंने राधा रानी को चीज को आस्वादन के लिए, उस प्रेम का आस्वादन के लिए उनके भाव को अपहरण कर लिया, क्योंकि बिना भाव वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता है। और भाव जो है कोई जड़ीय वस्तु नहीं है, भाव चिन्मय वस्तु है। आप भाव में बैठे बैठे किसी भी विषय को किसी भी वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। आप यहां बैठे हैं लेकिन भाव के द्वारा आप कहीं भी चले जाते हैं। जैसे गोपिकाएं घर में होती हैं, झाड़ू दे रही होती हैं या पालने पर बालकों को झुला रही होती हैं, लेकिन घर बैठी बैठी बाहर के हर दृश्य को देखती हैं। अभी श्याम सुंदर कहां पे है वो बैठे बैठे बता देंगे, और वो क्या कर रहे हैं वो भी बता देंगे, क्योंकि वो भाव रूपी नेत्रों से देख लेती है। इस भाव के द्वारा ही प्रेम का अनुभव होता है, कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन होता है। तो कृष्ण मन में सोचते कि मैं अपने तो आस्वादित नहीं कर सकता, मैं तो विषय विग्रह हूं, और विषय विग्रह आश्रय को कैसे आस्वादन करेगा। इसलिए आश्रय जाति जो चीज है राजा रानी के भाव, उसको उन्होंने चोरी कर लिया। और विषय और आश्रय एक साथ होकर के परस्पर के सौंदर्य और प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि गौर सुंदर की जो लीला है, गौर सुंदर का जो अवतार एक चमत्कार अवतार है। इस अवतार के आगे जितने भी अवतार है सब फीके पड़ गए। इतना चमत्कार है कि उस चमत्कार को कौन नहीं अनुभव करेगा। एक बार अगर हृदय में आ जाए तो समझ सकते। इसलिए कृष्ण तो चोर हैं, उनको चोरा अग्रगण्य कहा गया, लेकिन गौर सुंदर को महाचोर कहा गया। इन्होंने तो चोरी की, और कुछ गोपियों के जैसे मक्खन आदि को ले लिया इत्यादि, लेकिन महाप्रभु ने चोरी किया, वो सबसे अमूल्य वस्तु राधा रानी के भावों को चुरा ली। जिस भाव तक कृष्ण को भी प्रवेश नहीं था, कृष्ण भी यही कहते रहे कि राधा रानी का प्रणय क्या चीज है, मैं कैसे समझू। इसलिए किसी कवि ने कहा कि हे गौर सुंदर, आपने जो सन्यास को धारण किया, हमको समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार के सन्यास को लिए। आपका तो ऐसे भी प्रसिद्धि है बहुत बड़े चोर हो, और इतने बड़े चोर होकर के आज हरि नाम कैसे कर रहे हो। मीराबाई के पद है, अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग के यह माखन चोरा नाम धरायो बैरागी। आगे गौर सुंदर होकर के कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम रस पी रहे हैं। मीराबाई पद में लिखते हैं कि पूरे जगत का जो मक्खन चोरी करने वाला था, विशेषकर गोपियों को मक्खन चुराने वाला, आज बैरागी कैसे हो गया। किस छोड़ी वह मोहन मूर्ति, किस छोड़ी वह गोपी, आपने श्याम जो मूर्ति था वो कहां छोड़ दिए, और गोपी कामों को कहां परित्याग कर दिए। मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके पांव, और श्याम किशोर भये नव गौरा चैतन्य जाके नाव। आप वही श्याम सुंदर हो जिनको जसोदा मां ने मक्खन के लिए बांध दिया। आपने मटकी तोड़ा था इस अपराध में, आपको बंधन में डाल दिया। और वही चोर गौर कैसे हो गया। श्याम किशोर भये नव गौरा चैतन्य जाके नाव। पीतांबर के भाग दिखावे कटी कौपिन कसे, गौर श्याम की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। तो उससे भी अधिक हमारे कवि श्री नरहरिदास ठाकुर जी, नरहरि सरकार जी ने भी कहा कि आप जो पूछ रहे हैं कि बैरागी कैसे हुआ, इन्होंने संन्यास के कपड़े भगवा कहां से पहन लिए, और इन्होंने यदि भगवा पहना थे रंगने का रंग इनको कहां से मिला। सब बोले बड़ा रहस्यमय चोर है, और चोर जो होते हैं कपड़ा रंगने के लिए कोई रंग खरीद के थोड़ी लाते हैं, वो भी चोरी करते हैं। चोर के यहाँ तो हर चीज चोरी का ही होता है, और कोई खरीदते थोड़ी है। तो बोले ठीक है, कपड़े कहाँ से लाए। बोले राधा रानी के भाव को लिया, भाव का राधा भाव दूती सब बोले सब भाव रूपी कपड़े को डाल लिया। अब बोले उस पर रंग कैसे चढ़ाए। बोले गोपी नाम कुछ कुंकुमे निकिता बासा की मत चरुना। आपका जो वस्त्र जो लाल लाल अरुण वर्ण का हो रहा है कैसे हुआ। तो बोले रास मंडल में गोपिकाओं के स्पर्श और आलिंगन के द्वारा जो उनके हृदय में लगा कुमकुम था वो पूरे शरीर में लगा करके अपने वस्त्र को लाल बना लिया, अरुण बना लिया। गोपी नाम कुछ कुमकुम निधि दबात सिमत करुणम। और आपके जो हृदय में जो रोमांच हो रहा है, आप जो पनस की तरह आपके जो रोमा बनी खड़े हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये आपके सात्विक भाव का उदय, एक 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 संपत्ति आपको कहां से मिली? क्योंकि अस्त सात्विक भाव का आविर्भाव और रोगी ज्वलित सुदीप्त, ये कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है। ये बड़े बड़े प्रेमियों को भी नहीं देखने को मिलता, कुछ कुछ भाव का विकार होता है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता। और आप पूर्ण भाव के विकार में डूब रहे हैं, ये कहां से आपको प्राप्त हुआ? बोले तासम गाढ़ करादि बंधन न। ब्रज गोपिकाओं के राजा जी के गाढ़ अस्पष्ट को आलिंगन को प्राप्त होने के कारण उनके हृदय का जो भाव था इनके हृदय में संचरित हुआ, अर्थात उन्होंने अपने अष्टसात्विक भाव इनको दिया अथवा इन्होंने चोरी किया, ले लिया, पता नहीं चला कब छीन लिए, छुपा लिए। आश्चर्य सखी पश्च सत्य। अरे सखी, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो धूर्त ठग लंपट बंचक सच कभी वृंदावन के कुंज गलियों में अथवा कभी सांकरी खोर में अथवा कभी दान घाटी पर खड़े होकर के जो दान मांगता था, जो कहता था कि अरे गोपिकाओं, तुम लोग नित्य प्रतिदिन वृंदावन के मार्ग से गुजरती हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहां का राजा हूं, जाओ मेरे रास्ते को प्रयोग करो, कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स दो दो। क्योंकि जिसके राज में रहते हो तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और तुम लोग ऐसी ब्रज की गोपिकाएं और कितने सारे मटके सिर पर रख के चलती हो, भारी भरकम शरीर ऊपर से और मटके लाद करके चलती हो, तो हमारा जो रोड है टूट फूट जाता है, इसको रिपेयर करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, हम कहां तक इस सब रास्ता को बनाते और संभालते रहेंगे। और तुम लोग कभी हाथ भी नहीं लगती हो, दुबक के निकल जाती हो। आज अच्छा हुआ कि मैं रंगे हाथ सबों को पकड़ लिया हूं। उसमें गोपिकाएं अपने मस्तक पर टोकरी में छोटे छोटे मटकों में दही घृत दूध मक्खन लेकर के जा रही, गोविंद कुंड जा रही, क्योंकि वहां पर भांगरी ऋषि जो है वो जग करवा रहे और जग में लोग कुछ उपहार देने जा रही हैं, कुछ दान देने जा रही हैं। और कृष्ण बीच में उनको रोक लिया कि हमें कुछ दे करके जा। कुछ सखियां तो ठिठक के बोली, भैया हम अब इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम तो इधर उधर चले जाएंगे, कृष्ण के रास्ते से हमको जाने की जरूरत नहीं, दान देना नहीं। सब अपने अपने बचाव करने लगे। राधा रानी देखा कि तो पूरी लाइन बिगड़ गई, सब अपने अपने को बचा रहे और कृष्ण को मेरे ऊपर दृष्टि है, वो मुझसे दान देना चाहता। दूर खड़ी होके बोली, वहीं खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम जहां खड़े हो उधर से ही पवन का प्रवाह हो रहा है और तुम जैसे अपवित्र गोप मुझे छू देगा उसमें तो शुद्धता आएगी। ये जो हमारे मक्खन आदि हो तो फेंकना पड़ जाएगा, यहां तक कि तेरा सुबह पवन भी हमको छू दिया ने तो भी जग के लायक भी दूध नहीं हो सकता। दूरे सुशिष्ट धूर्त धृष्ट सत्य जामी सुजाग भवने व्रतिम पवित्राम। तवाद मरुत मपि मदिया गव्यम श्यामी निवम न भविता शुभ यज्ञ योग्यम। हे दुष्ट लंपट ठग वंचक, चंद्रावली के बेर के वन में विचरण करने वाले पंडिताई के खार और चतुरता के कर्पूर से रहित, जो तुम वृंदावन के अपने को राजा घोषित कर रहे हो, ये सब बातें और तू कहीं पर बनाना, यहां तक तुम अभी चले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम्हारा पद दूर की बात है, तुम्हारा पवन भी हमको न छूटे। जब तक पवन उधर से हमारे तक नहीं, उससे पहले तुम कहीं हो चलो, निकल जाओ। किसी वेद उपनिषद पुराण आदि से पूछो कि कृष्ण अपवित्र है, तो वे सुन के कानों में अंगुलियां डाल देगा कि महत अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अपवित्र, अरे अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो की वा जस्मृत कुंडली कांचन बाह्य भयंकर स्तुति। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, अपवित्र पवित्र यहां तक मले चंडाल जवन ही क्यों ना हो, किसी भी अवस्था को प्राप्त। और एक बार यदि गोविंद माधव का कीर्तन करता है, अहो बसो स्वपचो तो गरियान, तो पवित्र ही नहीं होता, पवित्र करने की क्षमता भी उसमें आ जाती। पुनस्तप्ति भक्ति पंक्ति पावन पावन, क्योंकि ऐसा सभी शास्त्रिक स्वर में कह रहे, किरात हुनिंद पुलिंद पुलकसा आवीर कंका जमुना खतादया जन्य पापा जल पात्र यात्रा शुद्धंती तस्मय प्रभ विष्णवे नमः। बोले भगवान का कितना प्रभाव, उसकी तो छोड़ो, उनके भक्तों का ही प्रभाव देख लो। तो उनके भक्तों का भी आश्रय लेके बड़े से बड़े दुष्ट लोग पवित्र हो गए और हो रहे हैं। किराज हुलिंद पुलिंद पुलकत आवीर कंक जमन मलेश कसाई कोई भी चंडाल, और उसे लोग कह रहे हैं कि हे दुष्ट लंपट ठग बंचक। इसलिए गोपिकाएं कह रहे कि आश्चर्यम सखी पश्य, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कभी लंपटों का गुरु था, कभी वृंदावन में जबरदस्ती अपना राजस्व चलाता था, जबकि यहां के राजा नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती, जिसको बोलते सीना जोरी, क्या कर लेगा, मैं ही यहां का राजा हूं, मैं ही यहां का मालिक। उसमें विशाखा जी बोल पड़े कि क्या उस दिन भूल गए, उस दिन की बात जब राधा रानी का वृंदावन का राज्याभिषेक हुआ था, और उस समय आपने छत्र को धारण किए थे, पीछे खड़े होकर के, और दस्तक भी किए थे आपने, सिग्नेचर भी किए थे कि मैं राधा रानी का जन्म जन्म का दास रहूंगा, मैं कभी भी वृंदावन के राज में विप्लव नहीं करूंगा, किसी तरह के मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करूंगा, मैं हर समय इनके अनुगत में ही रहूंगा, कभी भी राज हड़पने की चेष्टा नहीं करूंगा। और उस समय हमने भी तुम्हारी बातों को ऐसा सच माना था, और ये भी बात भूल गए कि जब राधा रानी वृंदावन के अधिष्ठात्री बनी, और उस समय तुम्हारे पास कोई सेवा नहीं था, क्योंकि हमारी सखी ने हम सबों को अच्छा अच्छा स्थान प्रदान किया, ललिता जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, हम भी उसके पास में बैठने वाले एक मिनिस्टर बने, और सभी सखियां, और जब तुमने देखा कि हमारे हाथ से राज तो गया और कुछ धंधा भी हाथ से निकल गया, मैं क्या करूं, तब उस समय आपने एक प्रार्थना पत्र लिखा था, और ललिता जी को आगे देख करके बोले थे कि हे ललिते, मेरे लिए भी कुछ एक छोटा मोटा स्थान सेवा प्रदान करो, क्योंकि बिना सेवा बिना कुछ किए जीवन खाली खाली सा लगता है, कुछ मुझे भी काम मिलना चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए। और उस समय ललिता जी ने साफ इनकार कर दिया था कि अगर इसको किसी सेवा में रख लिया जाए तो पता नहीं फिर क्या से क्या करेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो दूर ही रखना ठीक। क्योंकि जिसको हर समय राज हड़पने का लोभ हो, ऐसे राज का द्रोही व्यक्ति को अपने राज में न रख के थोड़ा सा दूर रखो, और राज में रहे भी तो उसको किसी पद पर मत बैठने। और ललिता जी प्रधानमंत्री, वो क्यों उनको किसी पद को दे? मंत्री का बड़ा विवेक होता, जानता है कि पद मिला तो फिर कुछ न कुछ करेगा अंदर। इनकी आंखों से अश्रू आ गया कि हाय मैं ऐसा वृंदावन के बेकार व्यक्ति निकला जो मेरे लिए कोई स्थान नहीं, कोई सेवा नहीं। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि राधा रानी बड़ा दयामयी है। हाँ, इनके जो चापलूस लोग है थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ करते, लेकिन राधा रानी ऐसी नहीं। तो उनके आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप ही कृपा करिए, आप ही कोई आदेश करके हमें सेवा प्रदान करिए। यदि आप कोई आदेश कर देंगे तो जरूर हमें भी कोई सेवा मिल जाएगा। आप इस प्रार्थना पत्र पर एक सिग्नेचर करके और इसको पास करा दीजिए कि इसे भी कुछ स्थान दिया जाए। उसमें राधा रानी ललिता की ओर देखे, अम्मा ने बोले, हे ललिते, मैं यदि वृंदावन का अधिष्ठात्री देवी बनी हूं तो मेरे राज में कोई दुखी रहे ये भी तो ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे राजा के कर्तव्य होता है कि हर दुखी का भी ध्यान रखा जाए। नहीं तो फिर मैं वृंदावन का अधिष्ठात्री हूं, मैं करुणामयी हूं, ये कैसे प्रमाणित होगा? लोग फिर मुझको कैसे कहेंगे लावण्य सारे रस सार सुख का सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे। आप जैसे भी कोई एक स्थान इसे प्रदान करो। ललिता जी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी कोई स्थान हो तब भी इसे दिया जाए, स्थान तो है ही नहीं, क्योंकि राधा रानी के हजारों दासियां हजारों सख्या से भी कहें वहां पर कौन सा स्थान खाली मिलेगा? सब पर सब दर्जन जिस एक ही सेवा में लगे हुए हजार हजार लाख लाख। ललिता जी बोली, एक स्थान है, अगर तुम्हें पसंद हो तो उस सेवा को तुम ले सकते हो। कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर बोले, जो कोई सेवा कुछ दे दो मुझे, हम तो ब्रज के किसी भी सेवा को पाने के लिए राजी हूं, चाहे कुछ भी हम यहाँ प्राप्त हो जाए, लेकिन इस वृंदावन में ही मुझे मिले, यही हमारी अभिलाषा है। विशेष करके राजा जी का अनुग्रह से मुझे सेवा प्राप्त हो, इससे बड़ा मेरे लिए क्या स्वभाव है? चाहे सेवा कुछ भी हो, यहाँ के झाड़ू का सलाका भी क्यों न बनू, लेकिन राजा रानी के ही आंगन का बनू। जब श्याम सुंदर इस प्रकार से कहने लगे तो ललिता जी बोली, एक स्थान है और स्थान है कोतवाल का। कोतवाल का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र जाकर के ढिंढोरा पीटे, चौकीदारी तो करता है लेकिन लोगों को घोषणा भी करके सुना दे घर घर में कि आज वृंदावन में क्या होने वाला है, वृंदावन में कौन सी लीला होगी, कौन सा उत्सव होगा, ये सब बातों को जो बदलाता है जगह जगह जा करके, उसको कोतवाल कहा जाता है। ऐसे हम सुंदर कोतवाल बन करके हाथ में छोटा सा ढोलकी ले लिया, डमरू डुक 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 करते हुए, भाइयों सुनो, हे वृंदावन के लताओं पताओं, तुम लोग आज निर्भय हो जाओ, क्योंकि जत्राधिपत्य ऋतुभान भानु पुत्र या जेनो दयेद प्रेम सुखम जनानम जस्मिन ममासा बलवत सुस्मिन ममास्तु वृंदावन एव। आज वृंदावन के जो आधिपत्य है वो राधा रानी जी को प्राप्त हो रहा है। ब्रजभानु नंदिनी यहाँ की अधिष्ठात्री देरी हुई है, इसलिए तुम लोग सब प्रसन्न हो जाओ। हे कोयल, तुम पंचम स्वर में कुकु की ध्वनि करो। हे मयूर, तुम नृत्य करो। हे पपीहे, तुम भी पिया पिया की रट करो। हे चातक, तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ जसो गान करो। हे सुख सारी, तुम लोग भी राधा माधव के गुणों को, विशेष करके राधा के महिमा को गान करो। अब कोई भय नहीं, अब कोई आतंक नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ पर सीने से लगाए जाते हैं। तो तुम लोग क्यों दुखी और चिंतित हो, आनंद से रहो। सभी पशु पक्षियों ने वृंदावन के पतंग सीख सभी ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वृंदावन की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो राधा माधव की सेवा में सहयोग नहीं करते, सब उनके ही लोग हैं। यहाँ पर एक भी कोई चीज ऐसा नहीं जो फालतू का हो। जद टिकट गुलम गोष्ठम समस्तम इतत सर्वानंद मयंग मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम। जद किंचित गुलम टिकट, यहाँ के गुलम लता औषधि कीड़े मकोड़े ये सब सचिदानंद स्वरूप है और सभी मुकुंद और राधव के लीला के अनुकूल होकर विराज रहे। ये सब लीला के सहायक हैं, परिकर हैं। श्याम सुंदर सबको बतला करके जब लौटे, देख रहे हैं कि जितने भी सखियां सब अपने अपने आसन में बैठी हुई हैं, राधा रानी तो सबसे ऊंची सिंहासन में, कोई उनको चमर डाल रहे हैं, कोई उनके लिए पान का बीड़ा लेकर के उनको आगे निवेदन कर रहे हैं, कोई जल का पात्र दे रहे हैं, कोई चरणों में बैठ करके चरण चाप रहे हैं, अद्भुत प्रकार से उनकी सेवा हो रही है। श्याम सुंदर भी अंदर अंदर में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनको चाहते हैं कि हमारे राधा जी का ही महिमा बढ़े। प्रेम का स्वभाव होता है वो संकीर्ण और छोटा नहीं होता, बहुत विशाल होता है। जिस प्रकार राधा रानी चाहती है कि श्याम सुंदर का उत्कर्ष हो, तो श्याम सुंदर भी चाहते हैं कि राधा जी का उत्कर्ष हो, और दोनों दोनों के उत्कर्ष को देखकर ही दोनों दोनों की प्रसन्नता होती है। आज श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हो, लेकिन प्रसन्नता के साथ में उनको कुछ लीला भी दिखाई पड़ रही, कुछ लीला हो और इसमें उत्साह उमंग आए। रघुनाथानंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं।